व्यास पूजा किसको कहते हैं? पहले व्यास जी कौन है ये समझना चाहिए। व्यास कहते हैं विस्तार को, एक छोटी सी बिंदु से ऐसे जो करते हैं ना गोलाई खींचते हैं
वृत्त
सर्किल, उसका नाम है व्यास। जो अपने बिंदु पर स्थित रहकर भगवत तत्व भगवान की महिमा का विश्व में विस्तार करते हैं उनका नाम व्यास है। कृष्ण ही एक तरह से व्यास है, अपनी महिमा का अपने ही विस्तार करते हैं। भगवान की कृपा की मूर्ति ही गुरुदेव हैं, इसलिए गुरुदेव को भी साक्षात हरित्वेन कहा गया। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रैः रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः, किंतु प्रभोर्त्यो यैव तस्य वंदे गुरोऽसि चरणारविन्द। किंतु इस श्लोक में साक्षात हरित्वेन कहा गया, साक्षात हरि नहीं कहा गया, इसका भी एक तात्पर्य है। गुरुदेव साक्षात विषय रूप हरि नहीं है, वो सेवक रूप हरि है। हरित्वेन माने हरित्वेन या हरित्व, हरित्व माने हरि का गुण, उसको कहते हैं हरित्व। एक भगवान है और भगवान के जो गुण हैं उनमें भी स्फूर्ति जिनमें होते हैं उसका तात्पर्य हरित्वेन से। अत्यंत अभिन्न प्रिय है, प्रिय माने अभिन्न उनको कहा गया इसलिए कि वो अत्यंत उनको प्रिय है, इसलिए गुरु को और शंकर जी को अभिन्न भगवान से इसीलिए माना गया जो अत्यंत उनके प्रिय हैं। गुरु के भी, गुरु माने एक आरोपित गुरु होता है, एक स्वरूपतः गुरु होता है। जो जिसमें गुरुत्व आरोप किया जाता है उनके द्वारा सचमुच में यह काम नहीं होता, उनमें यथातथ में ये गुण होने चाहिए तब वो गुरुत्व हरित्वेन होगा। भगवान में जो जो गुण हैं वो सब कुछ न कुछ उनमें प्रकाशित हैं। ऐसा कहीं लिखा भी गया है कि भक्तों में भगवान के गुण सब
कृष्ण भक्ते कृष्ण गुण सकल संचरित,
सब संचरित होता है। तो गुरु जी में विशेष रूप से प्रतिबिंब, विशेष करके तीन चीजें तो होनी ही चाहिए गुरु में। सप्त ब्रह्म निष्णात भगवान, भगवान का ज्ञान अखंड और अबाधित है, उनके ज्ञान में कहीं भी कोई अज्ञान नहीं, सब कुछ जानते हैं, कुछ बाकी नहीं आता। तो वैसे ही गुरु में भी कुछ गुण होना चाहिए। समस्त शास्त्रों का तात्पर्य जिनको उपलब्धि है अनुभव करने वाले किसी प्रकार का शंका को वो दूर कर सकते हैं शास्त्रीय। और भगवान की अनुभूति संपन्न हो, भगवान की उपलब्धि हो, भगवत क्या तत्व है उनका दर्शन और सब चीजों से, और सांसारिक विषयों में विरक्त हो, कोई भी सांसारिक कामना की उनकी जरूरत नहीं है, इन सबसे दूर है। उपशमा स्वयं, इसलिए उपनिषद में भी ऐसा कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरुम अभिगच्छेत समित्पाणि सोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। क्षत्रियम और ब्रह्मनिष्ठ। क्षत्रिय माने श्रुति से श्रोत्री, श्रुति के विषय में पारंगत। क्षत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म में निष्ठा सम। ब्रह्म में निष्ठा भी बहुत प्रकार की है, एक दो नहीं, हजारों प्रकार के इसके तरह। निर्विकार ब्रह्म में भी हो सकते हैं, परमात्मा में हो सकते हैं, नारायण में हो सकते हैं, और भगवत तत्वों में हो सकते हैं, कृष्ण में भी हो सकते हैं। कृष्ण के भी बहुत प्रकार के तारतम्य हैं, कृष्ण में भी। द्वारका के कृष्ण हो सकते हैं, मथुरा के कृष्ण हो सकते हैं, वृंदावन में भी सखरस के हो सकते हैं, दास्य के हो सकते हैं, वात्सल्य के हो सकते हैं, मधुर रस के भी हो सकते हैं। मधुर में भी एक दो नहीं, तरह तरह के प्रभेद और तारतम्य है। इसलिए इनकी अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए हम लोग रूप गोस्वामी को अपना इष्ट देव मानते हैं। उनकी जो धारणा है ब्रह्म की, वो धारणा सर्वोत्तम है। चैतन्य महाप्रभु जी ने उनको प्रयाग में शिक्षा दी और पुरी में उसकी पुष्टि की, ये कृष्ण कौन है। चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुपत उपाध्याय से कृष्ण के संबंध में कुछ इसके संबंध में सुना था कि किशोर अवस्था ही सबसे सुंदर उनका, बया कैशो रकम ध्येयम आद्य एव परो रस, मथुरापुरी श्याम एव परम रूपम, श्याम ही श्याम का जो रूप है वो परम ही सबसे श्रेष्ठ है। और श्याम रूप में भी उनका किशोर पुरी, मथुरापुरी, मथुरापुरी का तात्पर्य मथुरापुरी के अंदर में ब्रज है, ब्रज के लिए कहा। और ब्रज में भी राधा कुंड सर्वोत्तम, गोवर्धन का ये भाग, और उसमें भी राधा कुंड श्याम कुंड ये सर्वोत्तम। और उसमें भी किशोर जो रूप कहा, किशोर में भी कहने से एक किशोर ही मत समझ लो, किशोर में भी बहुत तरह के किशोर हैं। एक वयसंधि को पार कर दिया, कौगंड को पार कर रहे हैं, वो भी किशोर में आ रहा है। उस वयसंधि को पार करके तब प्रथम स्टेज में गए, उसको क्या कहते हैं, इसके बाद में उसमें प्रवेश करते हैं, फिर उसके बाद में मध्य किशोर, और उसके बाद में व्यक्त किशोर। कृष्ण का व्यक्त किशोर नहीं है, या राधा जी का व्यक्त किशोर नहीं है, अभी मध्यम से चल रहे हैं। बया का भी भाव है, मध्य का पूर्ण भाव है, और व्यक्त वाला अभी अभी पूरा नहीं हुआ, वक्त होने से ही यौवन हो जाएगा, इसलिए व्यक्त नहीं। श्रीमती राधिका जी का भी ये जो उम्र है वयस है सबसे श्रेष्ठ है। इसी के में वो श्रृंगार रस के नायक, इन्हीं को कहा जाता है ललित, हीर ललित इत्यादि। तो ये सब अनुभूति, उनकी लीलाओं की अनुभूति ये सब रहने पर तब इसकी ये धारणा, उनकी अनुभूति भी। ऐसे गुरु को यदि नहीं होगा तो शिष्य को क्या देंगे। और उपशमाश्रयम विषयों से अनासक्त हो, ये सब गुरु के लक्षण बतलाए गए। विशेष करके हमारे पहले के ऋषि मुनियों ने गुरु तत्व के संबंध में जो धारणा दी है, हमारे पाश्चात्य के महाजन जो है रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी, पादजीव गोस्वामी और ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, हम लोग उसका अधिक आदर करते हैं। श्रीमद्भागवत में इन गुरु का सब लक्षण, महाभागवतों का लक्षण सब दिया है, किंतु उन लक्षणों में जो 26 गुण बतलाए गए वैष्णवों के, उनमें कुछ ब्रह्म भाव का को लेकर के कहा गया है महाभागवत। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अवनाथदास गोस्वामी जो पर्वती महाजन हैं, महाप्रभु के जो परिकर हैं, इन लोगों का महाभागवत पर कुछ और ऊपर का है। जैसे 26 गुण उनमें बतलाए गए, 26 गुणों में पहला अकृत द्रोह, कृपालु अकृत द्रोह, सत्यसार मौनी, विजित सड़भुक, अकिंचन, माने ये 26 गुणों में एक है कृष्ण ही कसरण। चैतन्य महाप्रभु जी ने इसको भी कहा यो बाह्य शरणागति, जो इसमें सबसे श्रेष्ठ है उसको कहा यो। ये भक्ति राज्य का दरवाजा है, अभी प्रवेश भीतर में नहीं किया। हम लोगों की दृष्टि से जो राधा कृष्ण का कीर्तन पारायण है, श्रवण कीर्तन स्मरण वाले राधा कृष्ण, और उसमें भी जुगल किशोर के जैसे नरोत्तम ठाकुर इत्यादि उन्होंने कीर्तन में गाया है, या रूप गोस्वामी ने दिखलाया है, रघुनाथ दास गोस्वामी ने दिखलाया है, हम लोग को ऐसे कोटि के महाजनों के अनुगत हो। केवल कृष्ण शरणागति से नहीं है, वो लोग महापुरुष हैं, महाभागवत हैं, गुरु हैं, सब ठीक है, उनकी चरण धूलि हमारे सिर पर रहे, उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं, अवज्ञा नहीं। यहाँ तक कि वो द्वादश महाजन भी बतलाए गए, किंतु हम लोग अनुसरण करेंगे ये रूप सनातन रघुनाथ इत्यादि का ही हम लोग अनुसरण करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति में हम राधा कृष्ण की निष्ठा कहीं भी लक्ष्य नहीं करते। नौ जगद्गृही हैं, भीष्म पितामह हैं, या यम है, और सब जितने हैं ना, कौन कौन, बलि, स्वयंभू, नारद, शंभु, कपिला, कुमार, मनु, और प्रहलाद, जनको, बलि, वैयासकी, वयम, नारद, वयम माने नारद, ये सब जो द्वादश महाजन में हैं, इनमें चैतन्य महाप्रभु जी की परंपरा के अनुसार में ये सब भावनाएं नहीं है। खोज करके हार जाओ कहीं नहीं मिलेगी। महाभागवत है सर्वत्र अपने प्रभु चतुर्भुज नारायण का ये सब लोग ध्यान करते हैं, किंतु राधा जी के प्रति एकांतिक निष्ठा संपन्न नारद जी भी हैं, तो कृष्ण से भी राधा जी के प्रति अधिक झुकाव वाले नारद जी का ऐसा कोई कुछ नहीं देखा जाता। नारद जी हैं महाजन, ठीक है, हमारे गुरु के भी, गुरु के परम गुरु के मन मूल गुरु वो हैं, ब्रह्मा जी के गुरु हैं, शिष्य हैं, और वो ब्रज में भी आए हैं, किंतु इस प्रकार का भाव नहीं देखा जाता जैसे कि रूप सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी का ये सब भाव है। इसलिए इन सब लक्षणों से युक्त है यदि गुरु हो, और कीर्तन की प्रधानता देने वाले स्मरण इत्यादि में, नित्य लीला में स्मरण प्रधान माना जाता है, क्योंकि मन की क्रिया है और मन की क्रिया से वो होता है, किंतु ये कलयुग है। यद्यप अन्य भक्ति कलौ कर्तव्या तथा कीर्तनख्या भक्ति संयोगे ने व कर्तव्या, कीर्तन के माध्यम से ही स्मरण। कैसे, कोई श्लोक ले लिया रूप रघुनाथ दास गोस्वामी का, भजामि राधाम अरविंद नेत्रम, स्मरामि राधाम मधुरस्मिताभ्यां, वदामि राधाम करुणा भराभ्यां, ततो मम नास्ति गतिः। राधा जी का चित्र हृदय में कुछ लिए, और कृष्ण भी उनको प्रधानता दे रहे हैं, सेवा कुंज की भावना इत्यादि, तो कीर्तन के माध्यम से वो सब जब हम भजन करेंगे तो वो ये सब श्लोक इत्यादि हैं हमारे गोस्वामियों के, इसके अनुसार में अपने आप श्रवण होगा, कीर्तन प्रभावे स्मरण हो। तो हमारे गुरु इस सब विषय में परिपक्व हों, जैसा साधक होगा उसका गुरु भी उसी तरह का होना चाहिए। यदि सम जातीय भाव नहीं होगा ये सब चीजें, तब महाप्रभु जी के विचार में हम प्रवेश नहीं कर सकते। चैतन्य महाप्रभु जो चीज देने के लिए आए थे उस सब विषय में गुरु को भी अनुभूति होनी चाहिए। तभी वो शिष्य को दे सकते। विशेष करके ये कहा गया है, गुरु साधारण कोटि का नहीं, हमने एक दिन मथुरा में भी बतलाया था, एक तो कम से कम तो मध्यम का उत्तम होना चाहिए तो उनका कृपा कार्य करेगी, और यदि ऐसे गुरु नहीं होंगे तो कुछ सहायता कर सकते हैं बस, वो चीजों की अनुभूति हृदय में नहीं आएगी। इसलिए बतलाया गया कि तीन प्रकार के गुरु हों, उत्तम के कनिष्ठ, उत्तम के मध्यम और उत्तम के, तीन प्रकार के गुरु होना चाहिए। या ऐसे वैष्णव के संग से तत्क्षणात् वो ऐसे हाथ कर दिया और उनकी कृपा से सब कुछ हमारे हृदय में उदित हो सकता है। तो पहले जो है उत्तम का कनिष्ठ, उनको कहा गया
मूर्छित
कसाय, अर्थात कसाय है, कसाय माने कुछ अभी है किंतु मूर्छित स्थिति में है, लय अवस्था में, कामनाएं वासनाएं भी कुछ हैं मूर्छित अवस्था में, कोई उन पर कार्य नहीं, उनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकता, वो मूर्छित कसाय जैसे नारद जी हैं, पहले जीवन में भक्ति का साधन कर रहे हैं, भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान दर्शन दे करके चले गए तो छटपट करने लगे, तो भगवान ने उनको आकाशवाणी से ये कहा, इस कर्म द्वारा निर्मित शरीर के द्वारा और जब तक कोई वासना है तब तक अब हमारा दर्शन नहीं होगा, अब तुम इसी प्रकार से संसार में विचरण करते हुए हमारा नाम गुणगान करते रहो, साधन भजन करो, सर्वत्र हमारे नाम महिमा का प्रचार करो। यह है मूर्छित कसाय, अनर्थ सब दूर हो गए हैं, केवल उनके अंदर में एक स्पृहा है, एक तो पहले से प्रारब्ध कर्म के द्वारा उनका शरीर था अभी तक, इसलिए प्रारब्ध शरीर रहने तक कोई कामना वासना आ सकती है, ने? जब भगवान की कृपा से साधन भजन करते करते निपतत पंच भौतिकीं, उनका पंच भौतिक शरीर दूर हो गया, मृत्यु ने काल ने आकर के दूर कर दिया, काल के सिर पर चढ़ करके और पार्षद शरीर पा करके सावनक संपूर्ण रूप से उनका गंध फंद भी दूर हो गया, कब हो गए उत्तम, उत्तम के उत्तम हो गए, वो कह देंगे जैसे जाओ तुमको भक्ति हो जाए, बस तत्क्षणात् हो जाए। दूसरे हुए, पहला हुए मूर्छित कसाय, और वो क्या हो गए पार्षद शरीर प्राप्त, भगवत शरीर को प्राप्त कर गए, संसार में भगवान की इच्छा से आदेश से चारों तरफ में अभी विचरण कर रहे हैं, ऐसे लोगों के पर वो कृपा कर देते हैं, कर दिया जाओ हो गया बस। और मूर्छित कसाय वाले हैं ये लोग, क्या कर था परिश्रम से हरि कथा सुना करके और फिर वो लोग भी कृपा करने में समर्थ हैं, करते हैं, क्योंकि अनर्थ उनका दूर हो गया है, केवल सुप्त अवस्थान है और भगवान के कीर्तन इत्यादि में सब परिपूर्ण रूप से जुड़ गया। और नीचे से ये दूसरे हैं निर्धूत कसाय, निर्धूत माने अब वो सुप्त भी नहीं, वो भी धुल गया है, कैसे धुल गया, नारद और व्यास की कृपा से भगवान का गुणगान करते 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 सब कुछ धुल गया, अब कोई भी कसाय माने अनर्थ इत्यादि कुछ भी नहीं, अब कुछ भी नहीं है, सब कुछ संपूर्ण रूप से दूर हुए, इनको कहते हैं निर्धूत कसाय, जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी को श्रीमद् भागवत पाठ करने के लिए व्यास नारद इत्यादि सब लोगों ने कहा, व्यास भी थे नारद भी थे और भी उन पराशर इत्यादि सभी थे, किंतु इनको बैठा दिया, क्यों, निर्धूत कसाय, अब उनके अंदर में कोई कामना वासना, नवज्योति स्त्रियां के ऊपर में धूल ढाल रही हैं, देख रही हैं और इनको कोई उससे मतलब नहीं, व्यास जी ने उनको शिक्षा देने के लिए मिथिला में भेजा, मिथिला में गए, कपड़े टपड़े कुछ नहीं, अवधूत वेश में वहां पर पहुंचे, गेट पर पहुंचे, प्रहरी ने उनको रोक दिया, पहले ही राजा जनक ने कहा दिया कोई आएगा उसको रोक देना, मत आने देना, 3 दिन 4 दिन तक वहीं पर खड़ा रख देना। बस पहले ही गेट पर उनके कहने के अनुसार मैं उनको रोक दिया। अभी ठहरी है, मैं आदेश लेकर के आएंगे और 2-3 दिन नहीं आए। हम लोग रहते तो अपमान हो, अपमान समय कर लौट आते। उनको कुछ नहीं पता, खड़ा रहे वहीं पर। 2-3 दिन के बाद में अच्छा चलिए चलिए अब आदेश हुआ, तो वो ले गया कहाँ, दूसरे गेट पर। वहाँ पर बड़ी बड़ी सुंदरियाँ 16 वर्ष की, और उनके लिए 50-60 सुंदर बगीचे में उनको लेकर के घुमाती रही, हाव भाव करती रही, कोई भी मतलब नहीं। उसमें लगा दिया इसको, उनको जहाँ जहाँ ले गई वहाँ पर चले गए। फिर उनको भीतर में प्रवेश कराया, तब उनसे वार्तालाप हुई और तब उनको जनक जी ने कुछ शिक्षाएं दी। ये जनक जी भी साधारण नहीं थे, इसलिए ये निर्धूत कसाय है, और साथ साथ में नारद जी की और व्यास जी की कृपा से, भगवान की कृपा से उनके हृदय में रसता उत्पन्न हुई भागवत इत्यादि की, और तब उन्होंने ये कहा। ऐसे महापुरुष लोग यदि आंख से देख लेना बस सब अर्थ सिद्धि है। ये लोग ये तीनों में से कोई भी गुरु का कार्य नहीं करते, कोई भी, किंतु ये लोग थोड़ा सा नीचे उतर कर यह कार्य करते हैं। इन तीनों को ये ज्ञान नहीं है कि ये बद्ध हैं या मुक्त हैं, ये सब जीव तीनों से ऊपर है। कभी कभी इनको भान हो सकता है, इसलिए उस ऊपर से उतर करके तब गुरु का कार्य करके, गुरु का कार्य माने क्या, या हरि भजन करो, कृष्ण कृष्ण कहो, बस हो गया, जाओ तुम्हारे अंदर में सब कुछ स्फूर्ति हो जाओ। एक बहेलिया बाघ नारद जी के सामने पड़ गया, जानवरों को मारता है, और उन्होंने कहा बस थोड़ी सी कृपा कर, बैठ करके कृष्णाम करो और यह धनुष को तोड़ करके फेंक दो। बस सच कुछ फेंक दिया, और साथ ही साथ में ये सब है। तो ये 3 प्रकार के गुरु वैष्णव हैं उत्तम श्रेणी के। यदि ऐसे गुरु मिल जाए तो क्षण मात्र में भव सागर पार हो जाए। ऐसे गुरु मिलेंगे नहीं, दुर्लभ हैं, किंतु मिल सकते हैं, मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, यदि हमारा वैसा संस्कार हो तो भगवान जोगयुक्त कर देते हैं, जरूर जोगयुक्त कर देंगे। दूसरी बात मान लें कि ये तीनों की कोटि के जैसे नहीं है, उस समय क्या करेंगे, भगवत भजन ही नहीं करेंगे। और विशेष करके जिस समय साधक गुरु को खोजता है उस समय इतना ज्ञान भी नहीं, ये सब कहाँ से सुनेगा। अब तो हम लोग विचार कर रहे हैं, और जिस समय होता है उस समय तो कुछ नहीं समझता है, एकदम लिपाप होता है, एक श्रद्धा होती है या पूर्व जन्म का कुछ संस्कार हो तो वो कुछ समझता है, अन्यथा समझ में नहीं सकता। उस समय भगवान की ही कृपा एकमात्र गुरु से संबंध करा देती है ऐसे गुरु। इसलिए ये 3 प्रकार के गुरु न भी हो, उसे निम्न भी हो, मध्यम भी हो, समस्त शास्त्रों में सुनिपुण हो, शंकाओं को दूर करने वाले हों, कुछ अपरोक्ष अनुभूति भी भगवान की हो, विषयों से वैराग्य वाले भी हो, तो ये मध्यम श्रेणी के भी गुरु कृपा करके शास्त्र ज्ञान से अपने आचरण के संग से उसको आगे बढ़ा देते हैं और भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसलिए ये लोग भी गुरु के रूप में प्रणम्य है। ऐसे गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक श्रवण गुरु, एक शिक्षा गुरु, और एक तो दीक्षा गुरु होते ही हैं, दीक्षा मंत्र देने वाले, और एक श्रवण गुरु भी होते हैं जो शास्त्रों का श्रवण करा करके शुद्ध गुरु के पास में पहुंचा देते हैं। और एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु, श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु प्राय एक ही होता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है जो श्रवण गुरु, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु एक ही हो जाते, 3 अलग अलग नहीं। और कभी कभी दीक्षा गुरु हो गए, पास में नहीं रहे या अप्रकट हो गए, तो उस समय में शिक्षा गुरु उनके संभावापन्न सब योग्यता वही अलग नहीं, वो गुरु शिक्षा गुरु और श्रवण गुरु का भी कार्य। इनमें किसी गुरु के प्रति भी कोई भी श्रवण पथ प्रदर्शक अथवा दीक्षा गुरु किसी के प्रति कोई अवज्ञा, क्योंकि एक भावापन्न होने पर यह होता है। यदि दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु का एक भावापन्न नहीं है तो वो शिक्षा गुरु हो ही नहीं सकता। इसलिए भवान सब रखा, इसलिए कहीं भी कोई अवज्ञा और भिन्न देखने का कोई भी अवसर नहीं। एक और होते हैं गुरु, चैत्य गुरु होते हैं, बाहर में महंत गुरु और अंतर में चैत्य गुरु रूप से कृष्ण कृपा करते हैं। बल्कि यह भी कहा गया दीक्षा के गुरु के जानो कृष्ण स्वरूप, कृष्ण रूप, और शिक्षा गुरु को जानो
भक्त,
क्योंकि हमारे लिए हमारे गुरुदेव जी दीक्षा गुरु हैं ना। और मान लिया कि श्रीधर महाराज के भी बहुत से शिष्य हैं, वो भी दीक्षा गुरु का काम करते हैं और हमको भी वो शिक्षा देते हैं, तो हमारे लिए श्रीधर महाराज जी क्या हो गए, शिक्षा गुरु ना? और हमारे गुरु हैं दीक्षा गुरु, और उनका जो शिष्य है वो हमारे गुरु को शिक्षा गुरु कहेगा यदि उनको शिक्षा दिया, और अपने गुरु को दीक्षा गुरु। अब श्रीधर महाराज में और हमारे गुरु में हम किसको श्रेष्ठ मानेंगे गुणों की दृष्टि से? तुम्हारी प्रीति हो सकती है अपने गुरु के प्रति, वो जो समझो हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु के प्रति हमारी निष्ठा अधिक होगी, ये बात ठीक है, हम उनकी सेवा करेंगे, किंतु योग्यता के हिसाब से यदि मैं करूं जो हमारे गुरु जी से उनकी योग्यता कम है और वो भगवान को नहीं दे सकते, ये महान अपराध हो जाएगा। मजा आ रहा है? इसलिए वैष्णव मात्र ही गुरु है जो अधिकारी योग्य है, इसलिए उनको यथा योग्य सम्मान देना चाहिए। दीक्षा गुरु को तो सम्मान देना ही है हर हालत में, दीक्षा गुरु यही तो शिक्षा देता है सब वैष्णवों को। मान लिया कि जैसे हम अपने गुरु के प्रति ऐसी भाव है, और नारद जी आ गए तो हम क्या करेंगे, उन पर कैसा भाव रखेंगे, या व्यास आ गए, सुखदेव गोस्वामी आ गए, क्या करेंगे? उस समय भी ये विचार करेंगे अपने गुरु जी की अवज्ञा न हो और उनका आदर भी हो, गुरु जी को सम्मान दे करके उनके आदेश से उन सबको यथा योग्य अपने गुरु के समान ही उनको सम्मान। ये सब शास्त्रों की कि ये सब सुंदर सब विचार है, हम लोग इन्हीं विचारों को लेकर के चलेंगे। प्राचीन काल में वो द्वापर के अंत में, उससे पहले कुछ शास्त्रों का सब लोप हो गया था, शास्त्र सब लुप्त हो गए थे, ब्रह्मा इत्यादि देवता भगवान के पास में पहुंचे और उनसे उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु शास्त्र सब तो लुप्त होते चले जा रहे हैं, पहले जैसा ब्रह्मचर्य नहीं रहा, पहले जैसे लोग अब वो सब शक्ति नहीं, उनसे सूत्रधर नहीं रहे, उनको कोई चीज का स्मरण नहीं होता, उन्हें कोई एक विषय का ही ज्ञान नहीं है, तो वेद का इतना ज्ञान कहां से आए? इसलिए आप कुछ कृपा करें जो ये सब लुप्त न हो। भगवान ने कहा जो अच्छी बात, उन्होंने शक्ति संचरित करके किसी किसी समय में स्वयं और किसी किसी समय में जब कोई योग्य जो ऐसा नहीं होता तो अपनी शक्ति संचरित करके व्यास के रूप में जगत में आते हैं। यद्यपि यह कहा गया है कि व्यास साक्षात नारायण, शंकर साक्षात व्यासो नारायण तथा, शंकर जी साक्षात व्यास हैं ये कहा गया है, व्यास जी स्वयं भगवान है कहा गया। भगवान माने क्या, किसी में योग्य जीवों में भगवान कभी शक्ति संचय करके जब ज्ञान शक्ति का प्रकाश करते हैं तो उसको ज्ञान का आविष्कार बताता है, जैसे कपिल देव जी, ऋषभ देव है और सब लोग हैं, ये सब ज्ञान का अवतार है। नारद में भक्ति का अवतार है, नारद जी तत्व और उसमें भक्ति को प्रवेश करा करके भक्ति का प्रचार उसके द्वारा कराते हैं। परशुराम आवेश अवतार, पृथ्वी महाराज जी ये सब लोग अवेश अवतार। तो किसी समय में जब योग्य जीव नहीं मिलते तो स्वयं विष्णु के रूप में गर्भदशाई उस रूप में आकर के जगत में व्यास का कार्य करते हैं। विशेष करके वेदों का विभाग और पुराणों का प्रकाश और उसमें भी अंत में श्रीमद् भागवत का प्रकाश, ये व्यास देव करते हैं। विशेष करके इनका प्रकाश करने के लिए कैसे लिखेंगे तो एक लेखक की जरूरत हुई। ब्रह्मा जी से कहा उन्होंने, हमको कोई लेखक चाहिए। ब्रह्मा जी ने गणेश को बुलाया, कहा जो थोड़ा सा लिखने का काम कर दो। उनको कुछ ग्लानी हुई कि मैं व्यास का लेखक बनूंगा, मैं इतना बुद्धि वाला। उन्होंने नहीं समझा कि ये नारायण स्वरूप है, इसलिए कुछ मन में ऐसी ग्लानी हुई। उन्हें भाई लिख तो दूंगा किंतु बीच में कोई भी मेरी कलम रुक जाएगी तो आगे नहीं बढ़ेगी, बस वहीं पर बंद। हमको काम चाहिए निरंतर। व्यास जी ने कहा जो ठीक है, किंतु बिना समझे यदि लिखोगे तो ये तुम्हारा उड़ जाएगा, समझ बूझ करके लिखना। जो कुछ हम बोलेंगे समझ लो तब फिर लिखो। तो उन्होंने कहा जो स्वीकार कर लिया, अच्छा ऐसे ही वो क्या लिखाएंगे, ऐसे हम तो सरस्वती और विद्या के हैं, भंडार हैं। तो उन्होंने अपने शास्त्रों में, पुराणों में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में कुछ ऐसे श्लोक लिखे हैं जिसको कूट व्यासकूट कहते हैं। जैसे व्यासकूट में वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति, ये साधारण श्लोक नहीं है। इसी पर श्रीमद् भागवत सब, ये पहला जो श्लोक है जन्मा, इसकी प्रारंभ में और भागवत के ये समस्त सार भाव इसमें आए हैं। इसी की व्याख्या और पहले श्लोक इत्यादि की व्याख्या, ये सब चीजें हैं समस्त पूरा भागवत। कुछ दिया जाए ना जो चैतन्य महाप्रभु के अनुगत नहीं है, उनसे पूछा जाए कि भाई वदन्ति तत्त्व विदस् तत्त्वम यज् ज्ञानम अद्वयम्, अद्वय ज्ञान स्वरूप ही कृष्ण है, तो इसका क्या तात्पर्य है। बड़े बड़े विद्वानों का मस्तक चक्कर में है। आज जिस समय लिखा रहे हैं उस समय तो कोई धारणा नहीं थी जीवों की, किसी से सुना नहीं थे, और उस समय में लिख पा रहे हैं। अथवा व्यास तो और भी ऐसे हैं जिसका साधारण अर्थ एक है और उसका विशेष अर्थ कुछ और है। एक स्त्री है, उसका पति मर गया है किंतु अपने पति के साथ में घूम रही है, वो सधवा है। पति मर गया है अथवा सधवा है, ये कभी संभव है? ऐसे ही ऐसे कितने कूट हो सकते हैं। इसका परमार्थिक अर्थ, सूर्य अपनी कन्या के प्रति दौड़े, अरे यहाँ पर शाम उनकी संध्या हो जाती है, उनकी लड़कियाँ उनके प्रति दौड़े, तो उसमें क्या हुआ, उसके पीछे पीछे चल, शाम हो गई और चलते चलते हैं। ऐसे सब पुराणों में बहुत सब हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तो बोलते चले जा रहे हैं और बीच में एक कूट दे दिया श्लोक, बस सिर पर हाथ रख करके सोचने लगे। इतने में उन्होंने हजारों श्लोक बना लिया और फिर जब वो कुछ कुछ समझे और नहीं समझे तो उनसे पूछा, अच्छा नहीं समझे तो हमसे पूछ लो, तो कुछ बतलाए। इसके बाद में फिर हजारों श्लोक, इस तरह से वेदों के विभाग करने के बाद में ये सब शास्त्र पुराण लिखे गए। पुराण कितने, 54 पुराण, उपपुराण, शाखा पुराण, ये सब इतने प्रकार के पुराण हुए। और इन सब के लिखने के बाद में तृप्ति नहीं हुई, देखा जैसे इन पुराणों में विशेष करके श्रीमद् भागवत में और वेदों में स्त्रियों का, शूद्रों का अधिकार नहीं है, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। क्यों महाभारत की रचना की, बड़े विचक्षण बुद्धि के थे। शूद्र किसको कहते हैं, जो शरीर के लिए शोक करते हैं उनको शूद्र कहते हैं, न लड़ाई झगड़ा मारपीट इन्हीं में सब में लगे रहते हैं, तो उन्होंने महाभारत की रचना की, कृष्ण का चरित्र भी दिया और पांडव और कौरवों का युद्ध दिया। किस लिए युद्ध हो रहा है? राज्य के लिए युद्ध हो रहा है। मालूम होता है कि पांडव लोग भी युद्ध कर रहे हैं राज्य को लेने के लिए, और वो तो कर ही रहे हैं, तो दोनों बराबर की कोटि में हुए। किंतु नहीं, पांडवों को राज्य से कोई जरूरत है थी? एकदम नहीं। वो तो भूभार हरण करने के लिए कृष्ण ने एक निमित्त उनको बनाया था। जहां पांडव उनके कृष्ण के सखा, अर्जुन ने कह भी तो दिया हमको इस रक्त से सने हुए राज्य की हमको क्या जरूरत है, हमको तनिक भी जरूरत नहीं। क्या श्लोक? इस तरह से जरूरत नहीं, वो पहले ही कह दिया। मैं तो भिक्षा मांग करके भी भजन करना चाहता हूँ। कहे नहीं, ऐसा नहीं। और उनको युद्ध मिला। तब कृष्ण ने, अर्जुन ने कहा मैं आपका शरणागत हूं, आप जो जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। तो इस तरह से, और उसमें लड़ाई झगड़ा, भीम ने दुर्योधन को पटक दिया, पटक करके उसका ये जंघा उखाड़ दिया और रक्त जो आया रक्त से लेकर के द्रौपदी के केश को बांध। अब जो शुद्र श्रेणी के जो तामसिक भाव भयंकर थी उनको इसमें रुचि होगी। और धीरे 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 वहां से शांति पर्व में ले जाकर के शांति के माध्यम से भगवत तत्व को बतला करके और धीरे धीरे आगे। उसी महाभारत में गीता है, गीता का उपदेश सुना करके उसको भगवत तत्व का, जीव तत्व का, माया तत्व का ज्ञान देने, और इससे अधिक नहीं। इसके बाद में जब जानना होगा तो भागवत में आइए। छोटे छोटे लोगों के लिए, साधारण लोगों के लिए गीता की शिक्षा यथेष्ट, वो पहले पालन करें, और इसके बाद में फिर जब वो परिपक्व होकर के ऊपर में आए तो पीएचडी डीलिट के लिए जो श्रीमद् भागवत है, इसमें भगवत तत्व का रस के साथ में वर्णन किया गया। यही हम लोगों का उपास्य तत्व है। इसलिए व्यास जी सब कुछ कर लेने के बाद में जब उनको शांति नहीं मिली तो नारद जी उनसे मिले। नारद जी ने कहा तुम अशांत दिखते हो। अशांत क्यों दिखते हो? चित्त तुम्हारा चंचल देखता हूं, कुछ शोक ग्रस्त हो। उन्हें तो यही मुझे पता नहीं, यही मुझे पता नहीं है, क्योंकि रोगी को अपना रोग नहीं मालूम होता है। डॉक्टर है, वैद्य ही उसको रोग को पकड़ सकते हैं। उन्होंने कहा जी आप ही बतलाइए क्यों मेरा ऐसा चित्त है। उन्होंने कहा तुमने तो सब शास्त्र और धर्म और कर्म जो कुछ किया सब तुमने वर्णन किया, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उन्होंने कहा तुमने यथार्थ रूप में भगवान की कथाओं को वर्णन नहीं किया। आपने कृष्ण ही स्वयं भगवान है ये नहीं बतलाया, सब अवतारों का आपने वर्णन किया, सब देवताओं का भी वर्णन किया, किंतु कृष्ण ही स्वयं भगवान है ये नहीं कहा। और स्वयं भगवान में भी भगवान की वो बड़ी विचित्र लीलाएं जो कि ब्रज की लीलाएं हैं, ब्रज लीलाओं में सख्य उससे भी श्रेष्ठ है वात्सल्य। यशोदा जी उनके कान पकड़ती हैं पर ब्रह्म का, जिसको ब्रह्मवादी लोग ध्यान में उनकी केवल श्री चरणों की, नख चंद्रिका की केवल जो झलक होती है तेज, बस उसी का निराजन और ध्यान करते हैं। तो कृष्ण की तो बात है, आपने ये सब का कुछ भी वर्णन नहीं किया, इसलिए इन सब का वर्णन कीजिए, विशेष करके आप वर्णन कीजिए। भक्तों के पराधीन है भगवान, सब जगह आपने वर्णन किया जो भक्त का ही, भक्त भगवान की आराधना करता है, किंतु आप देख लाइए जो कृष्ण जो स्वयं भगवत्ता की चरम सीमा है वो अपने वैसे भक्तों की आराधना खुद करते हैं, और जिसकी आराधना करते हैं ना रा शब्द सुनने से ही अनुराग से भर जाते हैं, और धा कहने से ही उनके प्रति प्रभावित होते हैं, जिसके प्रति उनका नाम है राधा। राधा का तो आपने वर्णन ही नहीं किया। यदि आपने राधा का कुछ वर्णन भी किया तो ये बतलाया जो श्रीदाम ने उनको अभिसंपात कर दिया, और इन्होंने श्रीदाम को अभिसंपात कर दिया, इसलिए वो खिचड़ी गड़बड़ हो गई। वो लीला स्वयं गोलोक वृंदावन धाम से अवतरित होती है। कृष्ण अपने परिकरों के साथ में जगत के जीवों के कल्याण के लिए आते, ये सबका आपने वर्णन किया। विशेष करके आपने कहीं भी इतनी सुंदर कृष्ण की रास लीलाएं हैं, उनका प्रेम है, प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक विप्रलम्ब और एक मिलन, आपने इस सबका वर्णन नहीं किया। विप्रलम्ब के बिना संभोग की लीलाएं, मिलन की लीलाएं पुष्टि नहीं होती है, इनका आपने सब कुछ वर्णन नहीं किया। इसलिए आप इनका सबका वर्णन कीजिए। कहे मैं कैसे वर्णन करूं, तब उन्होंने कहा भक्ति योग के द्वारा चित्त को निर्मल कीजिए। भक्ति योग से चित्त जैसा निर्मल होता है, ज्ञान कर्म योग तपस्या व्रत इत्यादि के द्वारा चित्त वैसा निर्मल नहीं होता। एक श्लोक है मुझे याद नहीं आ रहा है, ज्ञान के द्वारा योग के द्वारा तपस्या के द्वारा भक्त उतना चित्त नहीं निर्मल होता जितना भक्ति के द्वारा होता है। तो इसका तात्पर्य उसके द्वारा भी निर्मल कुछ होता है। वहां पर यह बतलाया तपस्या माने एकादशी, जन्माष्टमी, रामनवमी का ये सब के द्वारा। हाँ, न साध्य मांग जोगो न सांख धर्म उद्भव, ममोर्जिता, इसी में बतलाया। अरे भाई वहां पर तपस्या को समझो एकादशी इत्यादि, जन्माष्टमी रामनवमी का जो होता है, कैसे एकादशी का व्रत कैसे हम लोग जैसा कर रहे हैं ना, वो नहीं, ये सगुना एकादशी, हम लोग अभी उसमें नहीं। भक्त विनोद ठाकुर ने जैव धर्म में बतलाया है हरिवासर का सम्मान कैसे होना चाहिए। पहले दिन ब्रह्मचर्य रहो, एक बेला उठो प्रसाद, पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माने संसारिक वाला ब्रह्मचर्य भी, और ब्रह्म में विचरण माने हरि कथा के माध्यम में अपने चित्त को उनमें लगाओ। दूसरे दिन निर्जला उपवास, दिन में शयन तैन कुछ नहीं, निर्जला निरंबु उपवास, और रात्रि में जागरण। और ये 2400 घंटा है, किस लिए जागरण और ये सब, भगवत चिंतन के अतिरिक्त, भगवान कथा के अतिरिक्त, भगवान नाम कीर्तन के अतिरिक्त और कहीं नहीं, 2400 घंटा उस दिन। और दूसरे दिन स्नान करने के बाद में ठाकुर जी का पूजा अर्चन करके, वैष्णवों का सम्मान करके, और पारण के, पारण ही होता ना, और उस दिन भी बस एक बेला खाना, यह है एकादशी का सम्मान। हम लोग कहां कर पाते हैं, एक दिन में ही काले ने क्या हो जाए। हम लोग कहते हैं जैसे अच्छा इतना जाओ खा लो थोड़ा सा, तो एक बार भी हो तो एक बार नहीं हो करके कितना, अच्छा भाई दो बार भी हो सवेरे नहीं, जो कुछ मिल गया, चना बादाम मिल गया मुख में दे दिया, वो कहीं से कमला मिल गया दे दिया, फिर सारा दिन भी चलता रहा। दो बार में हम लोग 2 घंटे 3 घंटे सो भी लेते हैं।